इन्हें कहते थे हमारे पुरखे मां। नवरात्र में मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है, लेकिन वेदों में कई देवियों का जिक्र है। समय के साथ इनमें से कई देवियां लोगों की स्मृति से गायब हो गईं। ऐसी ही 8 देवियों के बारे में यहां बता रहे हैं अभिजीत ठिटे। पुरातन काल से ही इंसान ने कुदरत से जुड़ी चीजों में देवत्व के अस्तित्व और स्वरूप को स्वीकार किया है। उन्हें सर्वशक्तिशाली माना गया और उनकी कृपा पाने के लिए प्रार्थना की गई। वेदों में ऐसे तमाम देवताओं और देवियों का जिक्र है। सीता अर्वाची सुभगे भव सीते वंदा महेत्वा यथा नह सुभगा अससी यथा नह सुफला अससी। ऋग्वेद के 4 मंडल में कृष सूक्त है, इसमें देवी सीता की चर्चा है। सीता का अर्थ है रेखा, जो भूमि जोतते समय बनती है। प्राचीन समय में जहां शिकार करना पुरुषों का काम माना जाता था, वहीं कंद मूल फल आदि जमा करना स्त्री का। इन्हें खाने के बाद फेंके गए बीज अंकुरित होकर पौधे बने और फिर उनसे भी कंद मूल फल पैदा हुए। ऐसा माना जाता है कि ये बात सबसे पहले किसी स्त्री के ध्यान में आई होगी। इसके बाद मानव ने खेती करना शुरू किया। वैसे उस समय जमीन जोतने का मतलब जमीन को कष्ट देना समझा जाता था, लेकिन कष्ट सहकर भी वो अनाज देती थी, इसलिए सीता का आभार माना गया। ऐसे में जीवन के लिए सीता की जरूरत ज्यादा हो गई और उनके प्रति आदर भाव का होना स्वाभाविक ही था। रात्रि रात्रि व्यक्षदायती पुरुत्रा देव्यक्षभि विश्वाधि श्रियोधित। ऋग्वेद के 10 मंडल में 127 सूक्त रात्रि सूक्त है। रात्रि का मतलब विश्रांति या नींद। रोज शाम के बाद आने वाली पूरी दुनिया को नींद में घेरने वाली देवी हैं रात्रि। ऐसे में ऋषियों ने रात्रि को देवी रूप दिया। रात के वक्त मन को सदा व्यस्त रखने वाले विचार शांत रहते हैं और कई तरह की नई कल्पनाएं मन में आती हैं। दूसरी ओर रात का अंधेरा शिकार करने वाले जीवों और गलत प्रवृत्ति के इंसानों को पसंद आता है। इन शिकारी जीवों और दुर्जनों से रक्षा करने की प्रार्थना इस सूक्त में है। ऐसा माना जाता है कि हर तरह के सौंदर्य से निखरी देवी रात्रि अपने नक्षत्रों के तेज से अंधेरे का विध्वंस करती हैं और अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। राका यास्ते राके सुमतयः सुपेशसो याभिर्ददासी दशुषे वसुनी ताभिर्नो अद्य सुमना उपागही सहस्रपोषम सुभगे रराणा। राका का मतलब है पूनम की रात। पूनम की रात का सौंदर्य, उसका प्रकाश, पानी का उनकी ओर आकृष्ट होकर दौड़ पड़ना, इन्हीं सब विशेषताओं के चलते उन्हें देवत्व प्रदान किया गया है। उनकी प्रार्थना इस तरह से की गई है। राका देवी जिस तरह से भक्तों को धन और समृद्धि देती हैं, उसी तरह से प्रेम और बुद्धि भी। ऐसी सौभाग्यशालिनी राका देवी हम पर प्रसन्न होकर सैकड़ों तरह के दान धर्म करने वाला और सभी के प्रशंसा का पात्र वीर पुत्र दें, ऐसी उनसे प्रार्थना है। आपह अपो देवी रूप हव्ये यत्र गावह पिबंती नह सिंधुभ्यः कर्त्वं हविहि। पानी के अभाव में सृष्टि का टिक पाना मुमकिन नहीं है, इसलिए पानी को देवता के रूप में पूजना स्वाभाविक है। जल के स्नान को पवित्र माना गया है। कुंभ के दौरान नदी और कुंड में डुबकी लगाने की परंपरा इसी बात का प्रतीक है। ऋग्वेद के 1 मंडल के 23 सूक्त में देवी आपह का उल्लेख है। उनकी प्रार्थना कुछ इस तरह से की गई है। मैं उस जल देवी को आमंत्रित करता हूँ जिन्हें हमारी पूज्य धेनु यानी गाय भी ग्रहण करती है। जल में अमृत और औषधीय गुण है। उदक यानी वर्षा, नदी आदि से मिलने वाला पीने लायक पानी सभी तरह के काम में उपयोगी है। ये जल मेरे भीतर के सभी दुष्प्रभावों, दुर्भावना आदि को दूर करे। अरण्यानी आन गंधिम सुरभिम भववन्नाम अकृषि वलाम प्राहम मृगाणाम मातरम अरण्यानिम अशम सिशम। ऋग्वेद में देवी अरण्यानी का सूक्त है। अरण्यों यानी जंगल की उपयोगिता, उसका शांत स्वभाव, उससे मिलने वाली औषधि फल आदि इंसानों की जिंदगी का आधार है। वन देवी किसी को चोट नहीं पहुंचाती, वो जंगलों की सुगंधी लताओं का लेप लगाती हैं। उसके पास भरपूर खाद्य पदार्थ हैं, वो पशु पक्षी कीटों से संवाद करती हैं। वन देवी और मानव के पुरातन रिश्ते हैं। इन सभी बातों का उल्लेख ऋग्वेद के सूक्त में मिलता है। उषा भास्वती नेत्री सूनृता नाम चेती चित्रा वी दुरो न आवह प्रार्प्या जगद्व्यू नो रायो अख्यत उषा अजी गर्भुवनानी विश्वा। सृष्टि का चक्र, उसका सौंदर्य, लगातार बदलाव की अनुभूति से वेद लिखने वाले ऋषि मोहित हुए और ऋग्वेद में उषा देवी का गुणगान किया। प्राचीन होकर भी सदा यौवन से भरपूर रहने वाली उषा ने ऋग्वेद के 24वें सूक्त में अक्षर रूप धारण किया। रात्रि को खत्म कर दिन की शुरुआत करने वाली उषा का गान ऋषियों ने काफी उत्साह से किया है। सूक्त में उनका वर्णन कुछ यूं है। विलक्षण प्रभा और मधुर वाणी की प्रेरक सुंदरी ने द्वार खोले हैं। उषा को रात्रि अपना घर खोलकर निमंत्रण देती हैं। उषा अश्वरथ पर सवार होकर सारे जग को जगाती हैं। पृथ्वी बलित्था पर्वतानाम खिद्रम विभर्षी पृथ्वी प्रया भूमिम प्रवत्वती महना जिनोषी महिनी। प्रकृति में ईश्वर देखने वाले ऋषियों ने पृथ्वी में देवत्व देखा और पृथ्वी को देवी माना। सभी जीवों को आश्रय देने वाली, पानी के प्रवाहों से तृष्णा शांत करने वाली, वृक्ष लताओं को फलने फूलने देने वाली, समस्त विश्व का पोषण करने वाली पृथ्वी देवी ना होती तो आश्चर्य था। ऋग्वेद और अथर्ववेद में पृथ्वी के लिए अनेक ऋचाएं हैं। मसलन पृथ्वी विचरणशील मेघों को बरसने के लिए प्रेरित करती हैं, अपने सामर्थ्य के जरिए वनस्पतियों को धारण करती हैं। हे गुणवती महिमावती पृथ्वी देवी, अपने सामर्थ्य से हमारा संरक्षण करें। विद्युत नमस्ते अस्तु विद्युते नमस्ते स्तन यित्नवे नमस्ते अस्त्यश्मने ये ना दुडाशे अस्यसी। आसमान में बिजली और उसके बाद की गरज, बरसात का रौद्र रूप कुछ अलग सा होता है। बिजली जब धरती पर गिरती है तब उसका रूप ज्यादा उग्र होता है। विद्युत को अग्नि का ही रूप माना गया है, इसलिए भी इसे देवत्व दिया गया। अथर्ववेद में विद्युत सूक्त है, इसमें इनकी महिमा कुछ यूं गाई गई है। आसमान में चमकने वाली बिजली दुष्टों का संहार करने वाले देवताओं का अस्त्र वज्र है। अंतरिक्ष में गर्जना करने वाली विद्युत तुझे नमन है।